بسم الله الرحمن الرحيم.
بسم الله الرحمن الرحيم. وبه نستعين إنه خير ناصر ومعين. وصلى الله على محمد وأهل بيته الطيبين الطاهرين. پروردگار عالم تمام برادران اور خواہران کی توفیقات خیر میں اضافہ فرمائے. خداوند متعال کے لطف و کرم سے سیرت و مقام مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بارے میں گفتگو تھی. عرض ہوا کہ قرآن مجید کی روشنی میں جو مقامات اور سیرت پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بیان ہو سکتی ہے اس کو بیان کیا جائے. ابھی تک چند جہاد سے گفتگو تھی کہ جس میں تقریباً پیغمبر ختمی مرتبت کے مختلف مقامات قرآن مجید کی نگاہ سے بیان ہو رہے تھے. انہی مقامات میں سے ایک مقام معراج پیغمبر اکرم ہے کہ ہمارے ہاں منبروں پر معمولاً گفتگو ہوتی ہے، لیکن واقعاً اس جامعیت کے ساتھ بہت ہی کم دیکھا گیا ہے کہ پیغمبر اسلام کے اس مقام کے بارے میں گفتگو ہوئی ہو. کیونکہ معراج قرآن کریم اور روایات اہل بیت اطہار کی روشنی میں دیکھا جائے تو ایک بہت ہی عظیم موضوع ہے. یہ نہ فقط پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے مقام کو ہمارے سامنے ترسیم کرتا ہے، بلکہ اس معراج سے انسان بہت زیادہ عملی اور علمی و معرفتی دروس حاصل کر سکتا ہے. دوسرے لفظوں میں، یہ مقام پیغمبر اسلام بھی ایسا مقام ہے کہ جو بھی سالکین ہیں، سیر و سلوک کے متوالے ہیں، ان کے لیے ایک بہترین راستہ بیان کیا جا رہا ہے. جتنے بھی اس وادی کے سالک ہیں، ان سالکوں کے لیے ایک راستہ ترسیم کیا جا رہا ہے. لہذا خود معراج کے بارے میں مختلف زوایا اور جہاد کے لحاظ سے بحث کرنے کی ضرورت ہے، تاکہ اولاً خود ہمارے لیے یہ مقام عظیم مشخص اور روشن ہو کہ یہ مقام کیا ہے، اور اس کے بعد دوسرے مرحلے میں انسان یہ کوشش کرے کہ اس مقام میں پیغمبر اکرم کی آیا تبعیت کرنا ممکن ہے یا ناممکن ہے. اگر ممکن ہے تو انسان کس حد تک تبعیت کر سکتا ہے، اور رسول اللہ کے اس مقام کا ان کی امت کو کیا فائدہ ہو رہا ہے، اور وہ امت اس مقام سے کون سا درس حاصل کر سکتی ہے جو ان کے لیے معرفتی اور عملی ارمغان اور تحفہ شمار ہو. لہذا کوشش کریں گے کہ اس عنوان پر چند دن رکیں اور کچھ تفصیل کے ساتھ گفتگو کریں، اور انشاءاللہ آپ دیکھیں گے کہ پیغمبر اسلام کے جو مقامات ہیں، جو سیرت ہے، ان مقامات میں سے یہ واقعاً ایک بے نظیر مقام ہے. بے نظیر یعنی حقیقی معنی میں بے نظیر، کہ اس کا کوئی نظیر نہیں ہے کہ جس مقام تک رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو لے جایا گیا، اس مقام تک کوئی نہیں پہنچ پایا. اور اس مقام کی درست طریقے سے، یعنی جو ہمیں کتاب و سنت سے سمجھ میں آتا ہے، وہ تصویر سامنے لے کر آئیں. بہت ساری باتیں ہمارے ہاں کی جاتی ہیں لیکن ادھر ادھر سے، ان میں کوئی خاص ترتیب اور ارتباط نہیں ہوتا، لہٰذا کبھی کبھار ہمارے لیے الجھن اور ابہام کا باعث بھی بنتی ہیں. انشاءاللہ کوشش کریں گے کہ ان چند چیزوں کے بارے میں گفتگو ہو. پہلا نقطہ کہ جس کے بارے میں اچھے طریقے سے تحقیق اور بررسی ہونی چاہیے، وہ یہ کہ معراج پیغمبر اسلام آیا بیداری میں تھا یا خواب اور نیند میں تھا. یعنی یہ جو پیغمبر اسلام کو معراج پر لے جایا گیا، یہ ایک عالم بیداری کی کتھا ہے، عالم بیداری کا قصہ ہے، یا عالم خواب و رؤیا کی بات ہو رہی ہے. دوسرا نقطہ کہ جس کے بارے میں گفتگو ہونی چاہیے، وہ یہ ہے کہ یہ معراج روحانی ہے یا نہ، معراج روحانی اور جسمانی دونوں ہیں. انشاءاللہ اس کے بارے میں بھی گفتگو کریں گے کہ روحانی سے کیا مراد ہے، روحانی اور جسمانی سے کیا مراد ہے. تیسرا نقطہ جو اس بحث کے اندر اچھے طریقے سے روشن ہونا چاہیے، وہ نقطہ یہ ہے کہ یہ سیر، یہ معراج کہاں تک تھا، اور اس معراج کے مشہودات کیا ہیں، کیا دکھایا گیا پیغمبر اسلام کو، اور اس معراج کے تحفے کون سے ہیں، کس بلندی تک پیغمبر اسلام کو لے جایا گیا، اور پھر اس سیر کے دوران رسول اللہ کو کیا کیا دکھایا گیا. یہ بھی ایک نقطہ ہے کہ جس کے بارے میں روایات نے بھی خوب بیان کیا ہے، آیات کے اندر بھی بہت سارے مطالب بیان ہوئے ہیں. چوتھا مطلب کہ جس کے بارے میں یہاں پر گفتگو ہونی چاہیے، وہ ہے منشأ عروج. اس معراج کا منشأ، سبب کیا ہے؟ انشاءاللہ اس کے بارے میں گفتگو کریں گے کہ منشأ فاعلی اور منشأ قابلی دونوں، جو منشأ اور سبب ہیں، ان کی توضیحات دی جائے کہ پروردگار عالم اپنی کن صفات اور کن کمالات کے اعتبار سے اپنے رسول کو یہ معراج کی نعمت اور سعادت سے بہرہ مند کرتے ہیں، اور پیغمبر اکرم اپنی کس جنبے اور اپنی کس جہت اور اپنی کس صفت کی بنا پر اس استعداد کو پیدا کرتے ہیں کہ خداوند متعال ان کو یہ معراج نصیب کرے. یہ تین چار موضوعات جو موٹے موٹے اور کلی طریقے سے کہے جا سکتے ہیں، لیکن انشاءاللہ ان کے ضمن میں اور بہت ساری جزئی باتیں ہیں اور بہت سارے جزئیات ہیں کہ جن کو بیان کرنے کی اہم ضرورت ہے، بہت زیادہ ضروری ہے، کیونکہ یہ فقط خالی پیغمبر اسلام کے مقام کو بیان نہیں کرنا، بلکہ انشاءاللہ آپ دیکھیں گے کہ اس سیر کی اگر حقیقت اور خصوصیات کو انسان اچھے طریقے سے سمجھے तो जो पैगंबर इस्लाम साल के असली हैं उनकी ताबईयत में उनके मानने वाले और उनकी उम्मती उनके जो उम्मती हैं उनके लिए भी इंशाल्लाह कुछ ना कुछ खुदावंद मुताल की जानिब से इस शेर की बरकात हैं जो उनको हासिल होती हैं। यानी ये फ़कत एक इल्मी मौजू नहीं है बल्कि आप इस मौजू से बहुत सारे अमली दुरुस हासिल कर सकते हैं। अब बंदा इस मकाम से ख़ुद अपने अमल के लिए भी बहुत ज़्यादा रहतोशा हासिल कर सकता है। दूसरे अल्फाज में खोल कर बात ये कहना चाह रहा हूँ कि पैगंबर इस्लाम के जो साहिब मेराज असली हैं उसके इस मेराज के तुफैल हर बंदे को अपनी ज़र्फियत अपनी वजूदी काबिलियत के एतबार से भी मेराज नसीब हो सकता है पैगंबर इस्लाम की ताबईयत में। ये कहना चाह रहा हूँ आसान अल्फाज में कि दुरुस्त है कि ये मेराज असली मेराज और वो जो मकाम है वो असली मकाम रसूलुल्लाह के लिए है, लेकिन रसूलुल्लाह के सदक़े में रसूलुल्लाह की ताबईयत में रसूलुल्लाह की पैरवी में खुदावंद मुताल ने पैगंबर इस्लाम की उम्मत के लिए भी ये राह खोल दिया है कि वो भी मेराज अपने ज़र्फ़ वजूदी के एतबार से हासिल कर सकते हैं। नहीं इनके मैं ये कहना चाह रहा हूँ कि जिस मकाम पर पैगंबर इस्लाम पहुँचे बस आम उम्मती भी उस मकाम तक पहुँच सकता है, ना ना। लेकिन ये भी नहीं कहना चाह रहा कि असलन किसी को मेराज नसीब नहीं हो सकता, ना। पैगंबर अकरम की ताबईयत में पैगंबर अकरम की इक्तिदा में कोई बंदा अगर वाकयन सीरते मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वाली वसल्लम को अपने वजूद पर नाफिज करे तो उसको भी उसके अपने वजूद की काबिलियत के एतबार से मेराज नसीब हो सकता है। असलन राह बाज हुआ खुला रसूलुल्लाह के ज़रिए से ताकि उसके उम्मती उसकी पैरवी में उरूज करें सैर करें। तो इंशाल्लाह इसकी अच्छे तरीके से आगे तौजीहात आएंगी। कुरान मजीद पर अगर आप निगाह करें तो ये जो मेराज का मौजू है इसके दो मकता और दो हिस्से हैं। ये जो मेराज है इसका एक मकता ज़मीनी है और एक मकता आसमानी है। मेराज का जो ज़मीनी मकता है वो खुदावंद मुताल ने सूरह इसरा में बयान किया है कि जिस मक्ता और जिस सैर में एक ज़मीनी सैर को बयान किया जा रहा है कि मस्जिदुल हराम से ये सैर शुरू होता है बैतुल मक़दस के जो हमारे यहाँ मशहूर है बैतुल मुक़दस बैतुल मक़दस तक है। ये ज़मीनी सैर है ज़मीनी मकता और ज़मीनी हिस्सा है मेराज का इसरा का कि जिसको कुरान मजीद के सूरह इसरा कि जिसको हमारे यहाँ बनी इसराइल भी कहते हैं 15वें पारे में है 17 नंबर सूरा है वहाँ पर बयान किया गया है। और मेराज का एक और मकता भी है कि जिस मक्ता को हम कहते हैं कि मस्जिद अक्सा से सिदरतुल मुंतहा तक है। ये मेराज का जो मक्ता और हिस्सा है खुदावंद मुताल ने इस मक्ता और इस हिस्से को सूरह नजम में जिक्र फरमाया है। इसीलिए बाज़ बुजुर्गान ताबीर करते हैं कि मेराज पैगंबर अकरम के बारे में दो हिस्से हैं, एक इसरा है और एक मेराज है। इसरा सूरह बनी इसराइल में बयान हुआ है कि जो ज़मीनी सैर है, और जो मेराज है वो मेराज सूरह نجم میں ذکر ہوا ہے کہ وہاں پر خداوند متعال پیغمبر اکرم کے اس آسمانی سیر کو بیان فرما رہا ہے کہ جس آسمانی سیر میں مسجد الاقصیٰ سے پیغمبر اسلام وہ پورے عالی ترین جو مقامات ہیں سدرت المنتہا، پھر وہ کعبہ قوسین سے بھی آگے کہ جس کو او ادنا کے ساتھ تعبیر کرتے ہیں، یہ والے مقامات ہیں جو 27 نمبر پارے میں ذکر ہوئے ہیں، اور قرآن مجید کی 53 آیت کے اندر اس معراج کا تذکرہ ہے کہ انشاءاللہ ان آیات کے بارے میں، جو اسراء کے بارے میں، ان کے بارے میں بھی اختصار سے گفتگو ہوگی، اور اسی طریقے سے جو معراج ہے اس کے بارے میں بھی انشاءاللہ خدا نے متعال نے توفیق دی تو گفتگو کریں گے. بس یہ چیز آپ ذہن میں رکھیں کہ پیغمبر اکرم کے معراج کے دو حصے ہیں، ایک زمینی ہے کہ جو سورہ بنی اسرائیل میں، سورہ اسراء میں ذکر ہوا ہے، اور ایک آسمانی ہے، آسمانی سیر ہے کہ جو سورہ نجم میں ذکر ہوا ہے. جو سورہ نجم میں ذکر ہوا ہے اس کا میں تھوڑا سا آغاز کرتا ہوں، آج ایک آدھ کلمے کی وضاحت کرتا ہوں، توضیح دیتا ہوں کہ سورہ بنی اسرائیل کے جو 17 نمبر سورہ ہے 15ویں پارے میں، یہاں سے آغاز ہوتا ہے. بسم اللہ الرحمن الرحیم، سبحان الذی اسرا بعبدہ لیلا من المسجد الحرام الی المسجد الاقصی الذی بارکنا حولہ لنریہ من آیاتنا انہو ہو السمیع البصیر. کہ یہ جو پہلی آیہ کریمہ ہے اسی اسراء کو بیان کر رہی ہے، کہ انشاءاللہ ایک ایک کلمے کے بارے میں گفتگو کرتے ہیں کہ پاک ہے وہ ذات کے الذی اسرا بعبدہ، جس نے اپنے بندے کو رات میں سیر کرایا، لیلن رات کے اندر ہی، یعنی پاک ہے بابا، پاک ہے وہ ذات، منزہ ہے وہ ذات کہ جس نے اپنے بندے کو راتوں رات سیر کرایا. کہ انشاءاللہ ان جملات کے بارے میں بحث کرتے ہیں کہ اسرا کیا ہے، اسرا رات کو جو سیر کیا جائے اسے اسراء کہتے ہیں، پھر لیلن رات کا پھر جدا گانا تذکرہ کیوں ہو رہا ہے، انشاءاللہ اس کے بارے میں بعد میں گفتگو کریں گے. فعلاً میں صرف یہ دکھانا چاہ رہا ہوں کہ سبحان الذی اسرا بعبدہ لیلن من المسجد الحرام الی المسجد الاقصی، کہ یہ سیر مسجد حرام سے ہے مسجد اقصیٰ تک. مسجد اقصیٰ اسی بیت المقدس کے اندر ہے، کہ اس سیر میں آپ دیکھ رہے ہیں مبدأ سیر، آغاز سیر مسجد حرام سے ہے، اور انتہائے سیر وہ مسجد اقصیٰ ہے. یہ اسراء جو سورہ بنی اسرائیل میں ذکر ہوا ہے، سیر کا آغاز اور انجام، آغاز مسجد حرام سے ہے اور انجام اور انتہا مسجد اقصیٰ وہی بیت المقدس ہے، وہاں تک اس سیر کا تذکرہ ہے. یعنی دوسرے لفظوں میں جو میں پہلے عرض کر رہا تھا کہ سورہ اسراء کے اندر خداوند متعال معراج کے مقطع زمینی کو ذکر کر رہا ہے کہ مسجد حرام سے مسجد اقصیٰ تک ہے. اچھا، اس کا آغاز جو ہو رہا ہے سبحان سے ہو رہا ہے، سبحان الذی. یہاں پر میں تھوڑی سی توجہ چاہوں گا کہ یہاں پر دقت فرمائیں اور تھوڑا سا غور کریں، جو غور طلب مطلب ہے معراج کے اندر، کہ جہاں سے معراج کا کسی حد تک فلسفہ بھی سمجھ میں آتا ہے اور کسی حد تک حقیقت معراج بھی ہمارے سامنے کھل کر سامنے آتی ہے کہ معراج یعنی کیا. کیونکہ یہ تو بہت سارے لوگ سوال کرتے ہیں نا کہ معراج کوئی نعوذ باللہ خداوند متعال کسی اوپر والی جگہ پر تھوڑی بیٹھا ہوا ہے کہ پیغمبر اکرم کو کہتا ہے کہ اب تم یہاں سے اٹھ کر آؤ، میں ادھر اوپر بیٹھا ہوا ہوں، تم وہاں پر پہنچو. ऐसे तो नहीं है ना, तौहीद का हमारे यहाँ तसव्वुर ये तो नहीं है। अगरचे आमियाना तसव्वुर हम आम लोगों को, बच्चों को इस तरीके से बताते हैं कि खुदा बहुत ऊपर है। अब इस बहुत ऊपर से मुराद हमारी जहत थोड़ी होती है कि इस ज़मीन और इस आलम मादा से ऊपर, यानी जहत के एतबार से एक बुलंदी वाली जगह पर नऊज़ु बिल्लाह खुदा बैठा हुआ है, ऐसे तो नहीं है। क्योंकि हमारे मआरिफ़ की जो रिवायात हैं, दुआएं, ज्यारतें, कुरान, हर जगह पर जो खुदावंद मुताल और तौहीद का तसव्वुर है वो एक ज़ात लामहदूद है। आल इन फ़ी दुनू वही व दान इन फ़ी उलू वही, अहल बैत अतहार ने खुदा की ऐसी मारिफत हमारे लिए कराई है कि दरअ निहाल के आल इन फ़ी दुनू वही, वो बहुत ज़्यादा बुलंद है लेकिन साथ इसके कि वो बहुत ज़्यादा करीब भी है। वदान इन फी उलू वही, बहुत ज़्यादा करीब है लेकिन इसके साथ वो बहुत ज़्यादा बुलंद है, यानी उसकी बुलंदी उसके कुर्ब को ख़राब नहीं करती और उसका कुर्ब उसकी बुलंदी को ख़राब नहीं करता। यानी ऐसे नहीं है कि खुदा अगर बहुत ज़्यादा बुलंद है तो इसका मकसद ये हो कि खुदा करीब ना हो, ना, अपनी तमाम तर बुलंदियों के बावजूद सबसे ज़्यादा करीब है और सबसे ज़्यादा कुर्ब के बावजूद वो बहुत ज़्यादा बुलंद है। कि ये आली तरीन जुमला हमारी अहल बैत अतहार अलैहिस्सलाम की तालीमात में वारिद हुआ है, आलिन फ़ी दुनू वही व दानिन फ़ी उलू वही। दरअन हाल के वो बहुत ज़्यादा बुलंद है लेकिन उसकी बुलंदी उसके कुर्ब को खदशेदार नहीं करती, वो हर एक के बहुत ज़्यादा करीब है। व दान इन फी उलूवही, उसका बहुत ज़्यादा करीब होना उसकी बुलंदी को खदशेदार नहीं करता, बावजूद इसके कि वो बहुत ज़्यादा करीब है लेकिन इसके बावजूद वो बहुत ज़्यादा बुलंद है। तो खुदा का तसव्वुर तो हमारे यहाँ इस तरीके से है। तो फिर ये मेराज क्या है, फिर ये सैर क्या है, कि इंशाल्लाह इसका आहिस्ता आहिस्ता फ़लसफ़ा इसी पहले लफ्ज़ से रोशन हो रहा है। सुबहान, ये किसी हद तक पैगंबर इस्लाम के मेराज की माहियत और हकीकत को भी हमारे यहाँ रोशन कर रहा है और किसी हद तक पैगंबर अकरम के मेराज का फ़लसफ़ा भी हमें बयान कर रहा है। कि आहिस्ता आहिस्ता अभी से कलमे सुबहान की थोड़ी सी तोजी और वजाहत देना चाहता हूँ। अच्छा, इस मतलब को समझने के लिए थोड़ा सा गौर कीजिएगा। हमारी रिवायात में एक नुक्ता वारिद हुआ है और हमारे उलमा ने भी उसको खूब बयान किया है कि कुरान मजीद के अंदर छः सूरतें या सात ऐसी सूरतें हैं जिनको मुसब्बहात सित या मुसब्बहात सब कहा जाता है। यानी वो छः या सात सूरतें जिनका आगाज़ खुदा की तस्बीह से होता है, इनको कहा गया है मुसब्बहात सित, जो सब्बह या युसब्बिहो से इन सूरतों का आगाज़ होता है। अगर फ़कत सब्बह या युसब्बिहो को मद्देनजर रखा जाए, यानी इस माजी और मुजारे के कलेमे को, तो फिर उस सूरत में ये मुसब्बहात सित यानी छः सूरतें हैं जिन सूरतों का आगाज़ इन कलिमात से होता है। वो वही सूरतें, सूरह जुमा, सूरह तगाबुन, सूरह सफ, सूरह हदीद, सूरह हाशर और सूरह आला। इन छह सूरतों का आगाज़ इन दोनों कलिमात में से किसी एक से होता है। अलबत्ता अल्लामा मोहम्मद तकी मजलिसी रिजवानुल्लाह अलैह, जो बाकिर मजलिसी के वालिद बुजुर्गवार थे, मशहूर अल्लामा मजलिसी जो हमारे यहाँ हैं उनके वालिद बुजुर्गवार अल्लामा मोहम्मद तकी मजलिसी, या जिनको मजलिसी है अव्वल भी कहते हैं, कि नहायत बुजुर्गवार शख्सियत थी, फ़कीह मन ला यहज़रुल फ़कीह की बेहतरीन शरह रोज़तुल मुत्तकीन के नाम से खुद इन्हीं की है, यानी मजलिसी अव्वल की। ये अरबी ज़बान में, फ़ारसी ज़बान में भी उनकी शरह है। कि बहरहाल हमारे मुहद्दिसीन में बहुत ही आला पाए की शख्सियत है, बुजुर्गवार शख्सियत है मजलिसी अव्वल। वो रोज़तुल मुत्तकीन की 13वीं जिल्द में लिखते हैं कि मुसब्बहात छः नहीं हैं बल्कि मुसब्बहात सात हैं, मुसब्बहात सब, क्योंकि वो इस सूरह इसरा और बनी इसराइल को भी उसमें शुमार करते हैं कि वो सूरतें कि जिन सूरतों का आगाज़ तस्बीह है हक और तस्बीह है परवरदिगार आलम से शुरू होता है। क्योंकि जो मशहूर कहते हैं कि मुसब्बहात सित, छः मुसब्बहात हैं, उन्होंने लिहाज फ़कत सब्बह युसब्बहो यानी माजी और मुजारे का रखा है, लेकिन मरहूम मजलिसी अव्वल फरमाते हैं कि ना, ज़रूरी नहीं है कि आप तस्बीह के अंदर फ़कत इस माजी या मुजारे को मद्देनजर रखें। मकसद यह है कि वो सूरत के जिसका आगाज़ तस्बीह के ज़रिए से हो रहा है, चाहे फिर उस तस्बीह के लिए लफ्ज़ माजी का हो सब्बह हो, या तस्बीह के लिए लफ्ज़ मुजारे का हो जैसे युसब्बिहो है, या तस्बीह के लिए लफ्ज़ मजदर का हो जैसे सुबहान है। मकसद ये है कि वो सूरतें कि जिन सूरतों का आगाज़ तस्बीह से होता है, इनको मुसब्बहात कहते हैं। इस एतबार से मुसब्बहात सित छः नहीं है बल्कि मुसब्बहात सात है, मुसब्बहात सब। और नकल हुआ है जैसा कि पैगंबर इस्लाम हर रोज़ रात को सोने से पहले इन मुसब्बहात सित की तिलावत फरमाते थे, इन सूरतों का दौर करते थे, इनकी तिलावत करते थे और उसके बाद सोते थे कि कोई भी इंसान सालिक है, जो सैर व सुलूक का मुतमन्नी है, जो बंदा भी चाहता है अपने ज़र्फ़ वजूदी के एतबार से उसको भी बुलंदियाँ, उसको भी उरूज और उसको भी मेराज नसीब हो, तो उसे भी चाहिए कि सोने से पहले हर रोज़ रात को इन सूरतों की तिलावत करे। कि इंशाल्लाह फ़लसफ़ा अर्ज़ कर रहे हैं, हकीकी फ़लसफ़ा तो खुदा जानता है, जो हम लोग रिवायात और इन चीज़ों से समझ सकते हैं कि उसको आहिस्ता आहिस्ता ज़िक्र करेंगे कि इन सूरतों की तिलावत करे इंसान कि जिनका आगाज़ तस्बीह हो तन्ज़ीह हज़रते हक़ से होता है। क्यों इन सूरतों की तिलावत करें? देखें, ये सूरतें कि जिन सूरतों का आगाज़ तस्बीह के साथ होता है, तन्ज़ीह हज़रत हक़ के साथ होता है, इसका क्या माना है? इसका माना यह है कि बंदा आकर खुदावंद मुताल की तस्बीह करता है। तस्बीह करता है यानी क्या? यानी इस नुक्ते को बयान करता है कि परवरदिगार आलम की ज़ात तमाम उयूबात, तमाम महदूदियतों और तमाम नकायस से बालातर है। इसी को तस्बीह कहते हैं। तस्बीह यानी इंसान ये बयान करता है, ये जिक्र करता है कि खुदावंद मुताल महदूद नहीं है, खुदावंद मुताल की ज़ात में कोई नक्स नहीं है, खुदावंद मुताल की ज़ात में किसी किस्म का ऐब नहीं है। ये तस्बीह है, ये तन्ज़ीह है जो आप बयान करते हैं। अच्छा, अगर एक इंसान चाहता है कि इस आलम तबीयत से कि आहिस्ता आहिस्ता में मेराज की माना और मेराज की माहियत की तरफ भी इशारा कर रहा हूँ। देखें, ये मेराज उरूज पर जाना, ये सैर करना मकामात के एतबार से है। यानी हम लोग समझते हैं कि पूरी कायनात फ़कत ये आलम तबीयत है, ये आलम मादा है। ना ना, पूरी कायनात आलम का एक मामूली सा ज़र्रा, मामूली सा हिस्सा ये आलम आलम तबीयत और आलम मादा है, कि जिसको आलम नासूत भी कहते हैं, आलम उनसुरी भी कहते हैं, आलम तबीयत भी कहते हैं, आलम दुनिया भी कहते हैं, ये सारे के सारे इसी के नाम हैं। अवालिम में से एक मामूली तरीन आलम ये आलम तबीयत है, ये आलम नासूत है, कि जो आलम तबीयत, आलम दुनिया, आलम नासूत गफलतों के साथ पुर है, महदूदियतों के साथ पुर है, नकायस के साथ पुर है। इस आलम तबीयत के अंदर बहुत सारे नकायस हैं। नकायस से मुराद मेरी ये नहीं है कि इससे अच्छा आलम बन सकता था, ना, नकायस से मुराद यानी इस आलम के अंदर बहुत सारी महदूदियतें हैं, कि सबसे बड़ी महदूदियत खुद मादा है, खुद जिस्म है, कि आलम तबीयत आलम जिस्म व आलम जिस्मानियात है। जहाँ पर ये तबीयत हो, जहाँ पर ये मादा हो, वहाँ पर खुद ब खुद बहुत सारी महदूदियतें आ जाती हैं। मादा कसीफ होता है, मादा हिजाब है, खुद बहुत बड़ा हिजाब है। लिहाजा अहले मारिफत कहते हैं और अहले हिकमत और अहले फ़लसफ़ा इसको बराइन अक्लिया के साथ इस बात भी करते हैं कि मादा मिला के हिजाब है। हिजाब, गैबूबत, इसका बहुत बड़ा सबब खुद मादा है। इसीलिए कहते हैं कि आलम मादा में एक ज़र्रा भी दूसरे ज़र्रे के हुजूर में नहीं पहुंच सकता। यहाँ पर गैबत ही गैबत है, यहाँ पर जुल्मत ही जुल्मत है, यहाँ पर तारीकी ही तारीकी है। ये आलम मादा की खासियत है। इसीलिए हम देखते हैं कि हिकमत इशराक में मरहूम शेख इशराक इस आलम मादा को आलम नूर के मुकाबले में लेकर आते हैं कि वो उनका अपना एक फ़लसफ़ा है। उस फ़लसफ़े के एतबार से वो इस आलम मादा को, इस आलम नासूत को, इस आलम तबीयत को आलम जुल्मत में लेकर आते हैं, क्योंकि यहाँ पर नूर इल्म नहीं है, नूर शुऊर नहीं है। भले इंसान के बारे में भी जो हम नूर इल्म की बात करते हैं, नूर शुऊर की बात करते हैं, वो इस मादे और इस बदन और इस बॉडी के एतबार से नहीं है। वो इसलिए कि इंसान हकीकत में नाम है उस गौहरे नूरानी का कि जिसको नफ्स और रूह के साथ ताबीर किया जाता है। उस अपने गौहरे नूरानी के एतबार से इंसान शुऊर भी रखता है, इंसान इल्म भी रखता है, इंसान तमीज़ भी रखता है और बहुत सारी जो कमाली सिफतें हैं उस एतबार से। वगरना अगर उसके फ़कत बदन को देखा जाए तो बदन मिला के हिजाब है, बदन मिला के जुल्मत है, बदन मिला के तारीकी है। इस बदन के एतबार से जुल्मतें ही जुल्मतें हैं। लिहाजा ये आलम तबीयत आलम जुल्मत है, आलम जुल्मानी है, आलम तारीकी है। इस आलम तारीकी से अगर कोई बंदा गुजरना चाहता है, इस आलम जुलुमात से इंसान रिहाई चाहता है, इस आलम नासूत से अगर इंसान निकलना चाहता है, तो इंसान को मेराज की ज़रूरत है, इंसान को उरूज की ज़रूरत है, इंसान को बुलंदी की ज़रूरत है। और इसी वजह से हम मेराज को मेराज कहते हैं कि इस मेराज के अंदर इंसान उरूज पैदा करता है, इस मेराज के अंदर इंसान बुलंदी पैदा करता है। अलबत्ता इस बुलंदी से भी मुराद वो प्लेन और जहाज़ वाली बुलंदी नहीं है, क्योंकि जहाज़ और प्लेन के ज़रिए से भी जैसे आप बुलंद होते हैं, तो आप आलम मादा से अभी नहीं निकले, इसी आलम मादा के अंदर हैं। ये ता हद निगाह, जहाँ तक आपकी नज़र जाती है, ये आलम मादा है। इस आलम मादा के अंदर ही आप घूमते हैं, आलम मादा में ही एक नुक्ते से आप दूसरे नुक्ते तक पहुंचते हैं। लेकिन ये जो मेराज है, ये जो उरूज है जिसकी हम बात करें, इस मेराज और उरूज में खुद इस आलम मादा से बुलंदी की बात हो रही है, इस आलम मादा से बाहर निकलने की बात। इस आलम मादा से बुलंद होने की ज़रूरत है, यहाँ से आप निकलते हैं। खूब, जब आप यहाँ से निकलते हैं तो यहाँ पर मेराज का फ़लसफ़ा भी रोशन होता है कि इंशाल्लाह इसकी मैं वजाहत आइंदा जलसे में ज़्यादा करूँगा। तो देखें, यहाँ से अब एक मुनासिबत को फ़ेलन सिर्फ आप समझें कि आखिर क्यों मेराज का जैसे ही तज़किरा आ रहा है तो मेराज का आगाज़ उन सिफात के ज़रिए से हो रहा है कि जिन सिफात को आप सिफाते तनजीही कहते हैं, तस्बीह कहते हैं। सुबहान के साथ मेराज का आगाज़ क्यों हो रहा है? क्योंकि मेराज में इंसान चाहता है कि खुदावंद मुताल की तस्बीह का मजहर बने। इस मेराज में यह है, मेराज में इस आलम तबीयत से निकलना है, मेराज से इस आलम नासूत से निकलना है, मेराज से इंसान इस आलम से निकल कर ऊपर जाना चाहता है। ऊपर जाना चाहता है यानी क्या? यानी इस आलम मादा से निकलना चाहता है। खूब, इस आलम मादा से निकलना चाहता है यानी तस्बीह हक का सहारा लेगा, क्योंकि खुदावंद मुताल की दो तरह की सिफात हैं। कुछ सिफात को हम सिफात तनजीही कहते हैं और कुछ सिफात को हम सिफात तशबीही कहते हैं। तो मेराज की मुनासबत इन अस्माए तनजीही के साथ है। अस्माए तनजीह खुदावंद मुताल वो हैं कि जो बयान करते हैं कि खुदा में ये महदूदियत नहीं है, खुदा में ये महदूदियत नहीं है, खुदा में ये महदूदियत नहीं है। इन तमाम महदूदियतों की नफ़ी हो रही है, तनजीह हक को बयान कर रही हैं। तो अब मेराज में भी इंसान चाहता है कि इन महदूदियतों से गुजरे, मेराज में भी इंसान चाहता है कि इस आलम मादा से सैर करे, मेराज में भी इंसान चाहता है कि इन महदूदियतों से बाहर निकले। खुद इन महदूदियतों से बाहर निकलने के लिए कौन से अस्मा की ज़रूरत है, कौन से अस्मा इसके साथ मुनासिबत रखते हैं? खुद वही अस्मा तस्बीह, अस्मा तनजीही इस मेराज के साथ मुनासिबत रखते हैं। लिहाजा यहाँ से आहिस्ता आहिस्ता आप अगर देखें तो मेराज की माहियत भी समझ में आ रही है। मेराज नाम ये नहीं है कि जिस्मानी तौर पर फ़कत एक नुक्ते से इंसान दूसरे नुक्ते तक पहुंच जाए, ना। मेराज का माना यह है कि इंसान इस आलम तबीयत से बाहर निकले। बकाया इंशाल्लाह मैं इसकी वजाहत आइंदा जलसे में अर्ज़ करूँगा। खुलासा कलाम ये कि यहाँ से थोड़ा बहुत समझ में आ रहा है कि आखिर इस मेराज और इसरा की आयतों की इब्तिदा तस्बीह खुदा से क्यों हो रही है, सुबहान से क्यों हो रही है, इस सुबहान की क्या मुनासिबत है मेराज के साथ। बकाया इंशाअल्लाह आइंदा जलसे में। वस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।